శాంతి. పరమపితా పరమాత్మా కీ ప్రియ సంతానో, శివ బాబా ఔర్ బ్రహ్మా బాబా కే నూరే రత్నో, ఔర్ యూ కహే బాబా కే శబ్దో మే పంజాబ్ కే శేర్ ఔర్ సాథ్ మే రాజస్థాన్ కే సూర్మా, సభీ బహనో భాయ్యో కో విశేష ఆజ్ కే దిన్ కీ ముబారక్ హో, ముబారక్ హో, ముబారక్ హో. హర్ దిన్ హమారే సబ్ కే లియే కుచ్ నయా హోతా హై, ఔర్ ఆజ్ కే లియే తో హమ్ సభీ ఇంతజార్ కర్తే హై. కౌన్ సా దిన్ హై ఆజ్? బాబా సే మిలన్ కా దిన్ హై. బాబా భీ ఇంతజార్ కర్తా హై కి సభీ తరఫ్ సే బాబా కే బచ్చే యహాన్ ఆకర్ కే భీ మిల్తే హైన్, ఔర్ ఆజకల్ తో యే టీవీ కే ద్వారా భీ దేశ్ విదేశ్ మే సబ్ జగా ఆటోమేటిక్ మిలన్ హోతా హై. ఔర్ హమే బడీ ఖుషీ హై ఇస్ బాత్ కీ కి బాప్ దాదా కా సాకార్ రథ ఇస్ సమయ జో నిమిత్ హై, హమారీ పరమ ఆదరణీయ దాదీ గుల్జార్ జీ, జిన్కా ఆఫీషియల్ నామ్ హృదయ మోహినీ హై, సబ్కే దిలో కో జీతనే వాలీ హై. తో దాదీ జీ ఇస్ సమయ శాంతివన్ మే హై, బిల్కుల్ స్వస్థ హై, ఔర్ శామ్ కో హమ్ సబ్ సే మిలేంగే, ఖుద్ భీ మిలేంగే, బాప్ దాదా కా భీ మిలన్ హోగా. బాప్ దాదా కో దిల్ సే తో సభీ యాద్ కర్తే హీ హైన్, బాబా కీ వాణీ సునతే హైన్, సాకార్ కీ వాణీ, సాకార్ కే ద్వారా జో చలీ హుయీ, ఔర్ అవ్యక్త బాప్ దాదా కీ వాణీ జో కితనే సాల్ హో గే సునతే సునతే, 69 సే లేకర్ 1969 సే లేకర్ 2017 తక్ కితనే జ్ఞాన రత్న మిలే హోంగే సబ్కో, అగర్ ఏక్ ఏక్ మురళీ కే జ్ఞాన రత్నో కీ వాల్యూ సమ్జే, జో బాబా కహతా హై లాఖో కీ ఏక్ ఏక్ రత్న హై, తో ఆప్కే ఖజానే మే కితనా జమా హో గ్యా హోగా. సభీ భర్పూర్ హువే యా అభీ కుచ్ కమీ నజర్ ఆతీ హై? జో సభీ సమజ్తే హైన్ హమే తో బాబా నే ధన ధాన్య సంపన్న బనా దియా, భర్పూర్ కర్ దియా, జరా హాత్ తో ఖడా కరో. సభీ నే హాత్ ఖడా కియా, వాహ్ దూర్ దూర్ తక్. బాబా నే జో ఖజానే దియే హైన్ ఆజకల్ తో దేఖో ఖజానే కే లియే లోగ్ బ్యాంక్ మే రఖతే హైన్, ఉస్కో దేఖ్ నహీ పాతే హైన్, సిర్ఫ ఫిగర్ దేఖతే హైన్, कितना जमा है, लेकिन ये ज्ञान रत्न जो है या दिव्य अनुभव है वो सभी दिल से और मन से उनकी वैल्यू को समझते हैं। उसमें से अगर कोई एक भी कमी हो जाए तो दिल में आता है कि ये कमी मुझे पूरी करनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब स्वयं हम बाबा के बच्चे भी हैं, बाबा के विद्यार्थी भी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट होने के नाते अपनी जांच खुद करते हैं, दूसरे कोई कहें वहां तक नौबत ना आए। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता, हमारे टीचर बहने अगर नहीं हमें सावधान करेंगी तो हमारा पुरुषार्थ तो फिर ढीला रह जाएगा। कल की मुरली आपने सुनी, परसों की, कौन सी एज चल रही है ये? गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, फिर कौन सी है ये? डायमंड एज है, हीरे तुल्य है। तो हीरे तुल्य जिनका जीवन है, क्योंकि हीरे को सबसे कीमती माना जाता है। जो बाबा कहते थे, मम्मा कहती थी कि जिस हीरे में कोई दाग ना हो, फ्लॉलेस। तो अपने को हम थोड़ा अपने ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। बाबा के पास, साकार बाबा के पास आते थे तो उनके पास अक्सर कोई छोटे होते थे तो बाबा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते थे, और भी कोई ऐसी चीज तो उनके पास मधुबन में हमने देखा, मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हुआ था। बच्चों को देखने के लिए नहीं था, लेकिन बच्चों के अक्षर कैसे हैं जो लिखते हैं, उससे बाबा को मालूम पड़ता था बच्चे की स्थिति कैसी है, कितनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, ज्ञान की वैल्यू इनके मन में कितने तक आई है, बाबा की याद का इनको कितना अनुभव है, बाबा की समीपता का कितना अनुभव है। उस बात को देख करके बाबा बच्चे की पुरुषार्थ की एप्रिसिएशन करते थे, वाह वाह करते थे, शाबाश देते थे। और अगर कोई कमी होती थी तो उसके लिए भी ध्यान खिंचवाते, बच्चे थोड़ा इस बात का ध्यान रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, इतना ही इशारा देते थे। तो देखा गया है कि जिस तरह का लक्ष्य जब से हम ज्ञान लेना शुरू करते हैं और रेगुलर अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इन दो बातों का असर किस पे होता है? थोड़ा अंतर्मुखी होकर के सोचना है। हमारे सोचने के तरीके पर होता है। सबसे पहले सोच ऊंची है तो दृष्टि भी बहुत ऊंची होगी। सोच ऊंची है तो वाणी के शब्द भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, दिव्य होंगे, शालीनता वाले होंगे और साथ में कर्मों के अंदर श्रेष्ठता होगी। आज का जो विषय दिया हुआ है मुझे, वो आपको बताया भी होगा बहन जी ने, क्या विषय है आज का, है किसी को याद? मेरे पास जो लिखत है वो मैं सुना देता हूं। अंतर्मुखता का आनंद, अंतर्मुखता का आनंद। तो कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो अंतर्मुखता में मन को ले जाना चाहते हैं बहुत सोच विचार में होते हैं, गहराई में चले जाते हैं। उसकी रिजल्ट क्या होती है? वो चेहरे पर आनंद नहीं होता है, शांति जरूर होती है। आनंद तब देखने में आएगा, जो मैं एक एक बात पहले सुना रहा था, उसकी एप्रिसिएशन होगी। दिल के अंदर उसके बारे में आपको उसकी वैल्यू क्या है, जब वो अच्छी तरह से दिल में आएगा तो खुशी होगी। मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, कभी कभी बाबा के वाणी में आता है। कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही आया था, रेगुलर बाबा की याद और मुरली का अभ्यास चाहिए। उसमें फिर थोड़ी सावधानी बाबा ने दी हुई थी, कोई कोई बच्चे, उनको मुरली की कदर नहीं है, कई दिन तक मुरली पढ़ते नहीं हैं, कुछ समय सुनते सुनते समझते हैं ये तो सब हमने सुन लिया, मुरलियां तो वही हैं, इनमें नया कुछ नहीं है। सवाल वो नहीं है कि इनमें नया है या पुराना है, सवाल तो ये है कि मुरली का स्वरूप हम कहां तक बने हैं। जो मुरली के अंदर इतनी गहराई है, क्या सचमुच उसको मैंने रियलाइज किया है, अपने जीवन में धारण किया है उसको, और धारण करने के बाद उसका आनंद लिया है, कहां तक लिया है? किसी से भी पूछो, दुनिया के अंदर इतने सम्मेलन होते हैं, विश्व शांति सम्मेलन, ये वो बहुत कुछ होता है। व्यक्तिगत किसी से पूछो, आपका मन कितना शांत रहता है, क्या जवाब मिलेगा? कोशिश करते हैं, कितना आनंद में रहते हो। आज के दुनिया में आप आनंद की बात करते हैं, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को यथार्थ रीति पहचान लिया है और बाबा की एक एक बात को, ज्ञान की जो भी बातें हैं उसको बाबा की श्रीमत समझ करके उसकी इतनी वैल्यू अपने दिल में रखी है, उसको धारण करना, धारण करने के लिए तो बाबा, जैसे बाबा भी कहते थे, मम्मा भी कहती थी, दादी भी कहती हैं कि मुरली सुनने के बाद या पढ़ने के बाद फिर उसका मंथन। मिसाल तो बाबा ऐसे देते थे, जो आज के पढ़े लिखे भाई बहनों को शायद वो मिसाल इतना अच्छा ना भी लगे, गाय घास खाती और फिर उसको अच्छी तरह से उसका हजम करने के लिए क्या करती है। तो ये अपने को सोचना है कि हम नेमीनाथ तो नहीं है। नेमीनाथ समझते हैं, नेम है, नियम है, क्लास में जाना है, मुरली सुननी है, पर उसके ऊपर मंथन कितना होता है, उसके ऊपर विचार कितना होता है, उसको कितना गहराई से हम अपने जीवन में ला सकते हैं, ला रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है। बाहर की बातों में दिमाग बहुत जल्दी चला जाता है। आजकल बाहर मुक्ता में ले जाने के लिए साधन बहुत आ गए हैं, सब जानते हैं ना कौन कौन से साधन है। टेलीविजन है और उससे भी ज्यादा तो मोबाइल है। सभी पर पीस ऑफ माइंड सदा नहीं आता है, दूसरी बातें बहुत आती है। तो ये एक सोचने की बात है, हमने बाबा को पहचाना है, समय को पहचाना है, और समय परिवर्तन होकर के फिर से हमें कहां ले चलने वाला है उसको जाना है, उसके अनुसार हमारी तैयारी कितनी है। कभी कभी न्यूज पढ़ते हैं, इधर मिसाइल का टेस्ट हो गया, इधर बम फट रहे हैं, इधर ये हो रहा है, और जब प्रदर्शनी समझाती हैं बहनें या भाई, उसमें भी वो दिखाते हैं विश्व का परिवर्तन होने वाला है। अब एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, अचानक से विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाए, आपकी तैयारी है, उसको फेस कर सकते हो? हाँ, जो समझते हैं हाँ हम तैयार हैं, जरा हाथ तो खड़ा करके दिखाओ, 5-10 हैं। और बाबा कब से वार्निंग दे रहा है? अंतर्मुखता की जब बात आती है तो बाबा की बातों को सीरियसली लेना जरूरी है। सिर्फ एक नियम के रूप में मुरली सुनना वो भी बहुत अच्छा है, उससे रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन जब गहराई से उसके ऊपर विचार करते हैं तो अपने को देखना पड़ता है कि हम विश्व परिवर्तन होने की दिशा में जो जा रहा है उसके अनुसार अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहिए, अपनी सोच में जो परिवर्तन चाहिए, अपने विचारों में जो परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन भी कौन सा चाहिए? परिवर्तन वो चाहिए कि हमारे मन में सदा शुभ विचार चले, पॉजिटिव थिंकिंग हो। आप प्रैक्टिकल देखते हैं, अगर कभी आपके नेगेटिव थॉट्स चलते हो, कभी आपस की वार्तालाप में किसी के बारे में नेगेटिव बातें डिस्कस कर रहे हो, उस समय आपको कोई मन का सुख नहीं मिलता है, मन को खुशी नहीं मिलती है उससे। वो सब पूरा होने के बाद पश्चाताप होता है कि इतना टाइम हमारा वेस्ट गया। फिर जब बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, बाबा कहता है बच्चे आप सारे संसार में सबसे महान आत्मा हो, सबसे श्रेष्ठ आत्मा हो, बाबा के नैनों के नूर हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो। ये सब जब अपने सोमान की बातें सुनते हैं तो फिर मन में आता है, हमें ऐसी बातें मन में लानी नहीं चाहिए जिनसे कोई फायदा नहीं, जिससे हमारा समय बर्बाद होता है, शब्द बर्बाद होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे आपसी जो संबंध है उसमें खटास आ जाती है, वाइब्रेशन भी ऐसे फैलते हैं। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, साइंस की तरफ से भी प्रकंपन उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो हम कौन से प्रकंपन फैला रहे हैं, अंतर्मुखता में ये बात खास आती है। अंतर्मुखी होकर के अगर खुशनुमा दिल से, खुशनुमा मन से बाबा के साथ मन लगा करके हम बैठते हैं और साथ में एक शुभ संकल्प रखते हैं कि हमें स्वयं को भी बाप समान बनाना है और साथ साथ अपने योग बल से इस विश्व का परिवर्तन करना है। परिवर्तन स्वतः ही होना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा जो योगदान है वो मैंने कितने तक दिया है। मेरे संकल्पों का सबसे कीमती चीज मनुष्य के पास है उसका संकल्प। संकल्पों का व्यर्थ जाना माना आपका इतना बड़ा खजाना वेस्ट हो रहा है। कभी आप साक्षी होकर के बैठ करके सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को देखें और उसको देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपने सारा दिन बहुत शुभ सोचा, बाबा के सर्विस के बारे सोचा, अनेक आत्माओं के कल्याण के बारे सोचा, या तो बाबा के याद में रह करके सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए अपने परकंपन फैलाए, तो आपको अंदर मन में बहुत सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, जिसका यादगार कह लो या जिसकी बात धर्म ग्रंथों में भी है। बाबा उसको बड़े प्यार से कहते थे, गुरबाणी जब पढ़ते हैं तो उसका सार दो शब्दों में सुनाते थे, जप साहब तो सुखमणि। साहब को जपना, मन ही मन में बाबा को याद करना, परमात्मा को याद करना, वाहेगुरु को याद करना, शिव बाबा को याद करना। सवाल उठता है कि ऐसी क्या पड़ी है, क्यों याद करें? सुख के लिए। जीवन में सुख हरेक को चाहिए, कोई एक भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो कहे मुझे सुख नहीं चाहिए। आप भाई बहनों से पूछता हूं, अपने जीवन में जो सदा सुखी रहना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाओ। सदा सुखी, कभी कभी कुछ ज्ञानी तो आत्माएं ऐसी भी मिलती हैं जो कहते हैं थोड़ा सा हम किसी के लिए दुख दुख उठा लें ताकि उसको तो कुछ शांति मिल जाए। ऐसा भी सोचने वाले कोई हैं क्या? अगर हो तो जरा हाथ उठाओ, आप दुख उठाओ भाई। आपको तो सदा ही शांति और सुख के आनंद में रहना है, तभी आप दूसरों को सुख दे सकते हो। आपका मन खुश नहीं होगा तो दूसरे का मन कैसे खुश करेंगे आप? जी खुश तो जहान खुश, ये बहुत पुरानी बात है, जी खुश तो जहान खुश। तो जी किससे खुश रहता है? जी खुश रहता है ज्ञान रत्नों से खेलने से, ज्ञान के गहराई में जाने से, और उसके साथ साथ भिन्न भिन्न नाम से बाबा ने मुरलियों के अंदर जो कहा है, अंतर्मुखता की गुफा में जाने से। अंतर्मुखता को योगियों की जो गुफा कहते हैं, वो प्रैक्टिकल में अनुभव करने की बात है। एकांत में बैठ करके ऐसे गहराई में चले जाएं जो आप उस समय और कुछ संकल्प में ना आए आपके, एक ही बात, मैं और मेरा बाप, मैं और बाबा, और किस स्वरूप में बाबा को देख रहे हैं? आनंद के सागर स्वरूप में, शांति के सागर स्वरूप में, प्रेम के सागर स्वरूप में। ऐसी भावना आपके मन में रहे उस समय, आपका स्वरूप क्या बन जाएगा? उस समय क्या बन जाएगा? स्वयं भी बाप समान बन जाएंगे। और बाबा वही चाहता है कि मेरा हर एक मुरब्बी बच्चा बाप समान बने। नहीं तो आप सुनेंगे लौकिक में, पिता हमेशा चाहेगा मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, ऐसे है ना? अब परमात्मा से आगे तो कोई जा नहीं सकता, उनके समीप पहुंच जाए तो कितनी खुशी होगी। और उसका एक ही आधार है, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपनी जांच करना, सेल्फ एनालाइजेशन, महीनता से एक एक बात को अपने अंदर झांकना। फिर इसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को उमंग में लाना कि मुझे परिवर्तित होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और अच्छी तरह से अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, जैसा बाबा चाहता है वैसा मैं अपने आप को इतना ऊंचाई में ले जाऊं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, टाइम भी निश्चित कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बीच बीच में साकार बाबा को देखते थे सारे दिन में, जब उनको टाइम मिलता था, एकांत प्रिय बहुत थे बाबा, सब बच्चों से मिलने के बाद भी एकांत में, जो ऊपर में आप जाते हैं पांडव भवन में, तो बाबा के तीन चार स्थान देखे आपने, उनमें से खास बाबा की झोपड़ी बहुत सिंपल होती थी, खजूर के पत्तियों से वो झोपड़ी बनती थी, और वहां बैठ करके बाबा ऐसे ऊंचाई में उड़ जाते थे कि अगर उस समय कोई बाबा का बच्चा बाबा से मिलने के लिए वहां आ जाए वो भी उड़ जाए उस समय। ये अपने अनुभव से मैं सुना रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता था, बाबा ने टाइम दिया है, मिलने गए हैं, और उस समय बाबा अपने उस नशे में एकदम देखने से लगता था ये इस दुनिया में इस समय बाबा नहीं है, क्या करेंगे ऐसे टाइम पर, आवाज तो दे नहीं सकते थे, पास बैठ जाते। फिर कुछ समय के और हम पास बैठ जाते तो हमें भी वो वाइब्रेशन का संग का रंग लग जाता, इतनी अंदर अंदर इतनी सुख की बात हो जाती। अति इंद्रिय सुख क्या होता है वो अनुभव होता उस समय। और फिर बाबा दृष्टि दे के और मैग्नीफाई कर देते थे। फिर पूछते बच्चे कुछ पूछना है तो क्या जवाब देंगे, वो सब भूल जाता था कि क्या पूछना है। तो यही कहना पड़ता था, बाबा आप तो याद नहीं है, बाद में पूछ लेंगे। तो बाबा दृष्टि फिर दे करके फिर उड़ा देता था। अब ऐसे अनुभव जब होते हैं तो उमंग बढ़ता है कि वास्तव में हमारी ईश्वरी जीवन क्या होनी चाहिए, हमें कितना अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, कितने हमारे मन में पॉजिटिविटी चाहिए, कितनी शुभ सोच चाहिए, और कितना दूसरों के बारे में। बाबा की अपनी स्थिति एक तरफ और सबसे ज्यादा बाबा का संकल्प चलता था विश्व की आत्माओं के परिवर्तन के बारे में, कि सबको कैसे संदेश मिले। आपने दो तीन दिन पहले की मुरली सुनी, न्यूज़पेपर में डालो, पूरे दो पेज लेकर के डालो, शिवरात्रि के बारे में थी। तो बाबा को एक तरफ साइलेंस में जाने का और अतीन्द्रिय सुख की खान जो है उससे अपने मन को इतना ऊंचाई में ले जाने का, और दूसरी तरफ कि ऐसा ज्ञान बच्चों को कैसे मिल सके उसके लिए क्या करना चाहिए। प्रदर्शनी करो, प्रोजेक्टर से जाकर के सेवा करो, या तो ज्ञान गोष्ठी करो, बठियां रखो, सेमिनार करो, कुछ भी। भावना एक ही थी कि ये सारे संसार के बच्चे मेरे इस समय देह अभिमान में होने के कारण वो सच्चा सुख अनुभव नहीं कर रहे। एक इनको सच्चा सुख मालूम पड़े, दूसरा समय को पहचाने। समय को पहचाने तो ईश्वरी जीवन का मूल्य बढ़ता है अपने दिल के अंदर। अगर समय की पहचान ना हो, समय को ऐसे ही ये तो होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, लड़ाइयां भी लगती हैं फिर बंद हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सबको डर लग रहा है, जिनके पास भी एटम बम, हाइड्रोजन बम सब कुछ है, अब उनको खुद को डर लग रहा है कि बाई चांस कहीं चिंगारी लग गई तो फिर तो क्या कहेंगे। शुभ बोलना चाहिए, तो बाबा कहता है कि वो सब वो लोग करेंगे जिनको विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उनकी प्रीत नहीं है बाबा के साथ, उनकी प्रीत नहीं है मानवता के साथ। आप बच्चों की बाबा से प्रीत है, आप बच्चे बाबा के होने के नाते से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें संसार की हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचाना है, उनको भी रास्ता दिखाना है, मार्गदर्शक बनना है। उस नाते से हमें अपने फर्ज अदाई करनी है कि हर एक तक ये संदेश पहुंचे कि आज के दिन अगर कोई बाबा को पहचान लेता है तो वो अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकता, इतना श्रेष्ठ बना सकता, इतना दिव्य बना सकता कि वो नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकता है। इतनी ऊंची बातें बाबा की, तो इतनी ऊंचाई में ले जाने वाले बाबा को दिल से क्या थैंक्स देने की जरूरत रहती है? थैंक्स देने का तरीका क्या होगा? थैंक्स बाबा वही मानता है, बच्चे आप संसार के अंदर बाबा के वारस होने के मिसाल बन जाओ, अपनी एग्जाम्पल सेट करो, आपको देख करके ऑटोमेटिकली दूसरे भी बाबा की तरफ खींचेंगे। हरेक हमारे चेहरे को देखता है, हमारे नैनों को देखता है, हमारे कर्मों को देखते हैं, हमारी चलन को देखते हैं, हमारे इंटरेक्शन को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं। तो उसमें आप सोचिए कितनी एक्यूरेसी चाहिए। भगवान के बच्चे, हाँ, भगवान को तो कोई कहेगा नहीं ना उनके अंदर कोई कमी है, तो भगवान के बच्चे बाप समान सुनते तो है ना, सन शोज फादर। डॉटर के लिए कहते हैं डॉटर शोज मदर। आज की मुरली में बाबा ने दोनों को याद किया, मम्मा को भी याद किया, बाबा को भी याद किया। तो बाप समान बनने की जो बात है उसमें विशेष एक तो ज्ञानी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा वो जो कभी अज्ञान की बात ना करे, अज्ञान की बात मन में ना आए। अज्ञान के कारण पांच विकारों में से किसी के भी वशीभूत होकर के कोई ऐसा कर्म ना करे, नहीं तो बाबा का सपूत बच्चा कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। अंतर्मुखता का भाव यही है कि हम बाबा के कलप पहले वाले, कौन से बच्चे हैं, वारस बच्चे, जो वारस हैं वो बाबा के वफादार बच्चे हैं, फरमा बरदार बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को बाबा कहां स्थान देता है? कभी तो कहेगा दिल रूपी डब्बी में रखता हूं, कभी कहेगा नैनों में रखता हूं, कभी कहेगा मस्तक में रखता हूं, और कभी गले की माला बना करके उस माला में रखता हूं। अभी आपको कहां रहना है? माला में रहना है, दिल के अंदर रहना है, बाबा के नैनों में रहना है, बाबा के मस्तक में रहना है, वो आप सोच लीजिए। लेकिन भावना एक ही है कि लोग भक्ति में भी कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, सुने हैं ना गुरबाणी के ये शब्द। तो प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं हम, जितना बाबा के साथ मन लगता जाता है, 63 जन्म का रहा हुआ कोई कर्मों का हिसाब है वो चुक्त होता जाता है, और उसके फल स्वरूप आत्मा हल्की होती जाती, पावन बनती जाती, शक्तिशाली बनती जाती है। पुरानी बातें सारी जो भी हैं उनको अभी छुट्टी देनी है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमको। बार बार कोई पुरानी बात मन में ला करके अपने आप को विचलित नहीं करना है। कल तक बाबा कहता, कल तक तो क्या, एक सेकंड पहले तक कोई बात हो गई, उसको भी ड्रामा, उसको बीती सो बीती ऐसे करके फिनिश करो, ताकि आप अपने सच्चे स्वरूप में हर समय अपने आप को देख सको। अगर शीशे के ऊपर थोड़ी मैल होती है तो चेहरा ठीक नहीं नजर आता है, आंखों में कुछ ना कुछ ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। तो इसलिए सबसे सहज तरीका क्या है जो आप हमेशा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकें? सबसे सहज तरीका कोई भी बताए। सबसे सहज तरीका मन मना भाव। सुना है ये संस्कृत शब्द है, गीता के शब्द हैं, मन मना भाव। फिर बाबा कहते थे मन मना भाव मध्याजी भाव, दोनों को साथ मिलाओ। शिव बाबा के साथ मन लगाओ और फिर जो बाबा से जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, ऐसी ऊंची प्राप्ति अपने दिल में सदा अगर आपके रहे तो क्या हो जाएगा? मन खुश रहेगा, धरती पर पांव नहीं रहेंगे, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, देखने वाले भी देखेंगे इनको तो पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, कौन सा नशा है? नर से श्री नारायण बनने का नशा, बाकी सब नशों में है नुकसान, सिवाय नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के नशे में। तो ऐसा नशा जरूर करो। हाँ, कोई चीज खा के नहीं करना है नशा, लेकिन इस स्मृति में आने से लक्ष्य अपना सदा स्मृति में रहे। जितना लक्ष्य स्मृति में रहता है तो लक्षण भी उसी अनुसार डिवेलप हो जाते हैं, क्योंकि श्री नारायण बनना, श्री लक्ष्मी बनना, श्री कृष्ण जैसा बनना, श्री राधे जैसा बनना, आप सोचिए कितने प्यारे लगते हैं वो। सारी दुनिया आज दिन तक उनको याद करती है। तो ऐसे अपने मन के सामने भी, मैं समझता हूं अपने स्थान पर भी ऐसे खुशनुमा चित्र रहने चाहिए। बाबा भी कभी कभी कहता है, कभी ऐसे चित्रों को देखने से नशा चढ़ता है। साकार बाबा को देखते थे, श्री कृष्ण का चित्र सामने देखते थे ना, तो उसको देख करके इतना नशा बाबा को चढ़ता था कि मैं ऐसा कल बनूंगा। तो नर से श्री नारायण बनना, उसके लिए आधार क्या बना? मेहनत क्या है? है कोई मेहनत? वह सहज है, सहज राज योग और सहज ज्ञान। सहज का भाव क्या है? जो स्वतः आपको अभ्यास करना ना पड़े, लेकिन आपका अभ्यास स्वाभाविक चलता रहे, नेचुरल चलता रहे, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। और वो बनती कब है? कब बनती है? जब अच्छी तरह ईश्वरी जीवन की वैल्यू को पहचानते हैं, ईश्वरी जीवन को श्रेष्ठतम बनाने की दिनचर्या को पहचानते हैं और उसके अनुसार दोनों बातों का बैलेंस रखें, एक तरफ तपस्या, दूसरी तरफ ज्ञान का सिमरण। ये दो बातों से डबल ताजधारी बन जाते हैं, योग के द्वारा आत्मा की लाइट वो बढ़ती है और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान भी लाइट है लेकिन साथ में धन धान्य संपन्न बनते हैं तो एक प्रकार से शक्ति मिलती है उसे। नॉलेज इज पावर ऐसा बोलते हैं, ज्ञान की अपनी शक्ति है, गुणों की अपनी शक्ति है, याद की अपनी शक्ति है। ये सब बातों को अगर गहराई से आप मंथन करेंगे तो आपके मन में कोई व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन ही नहीं रहेगी, सोच भी नहीं सकेंगे आप। इतना आनंद आएगा इसी में, आपस में रू रूहान भी इसी तरह की कर सकते हैं। तो आज से क्या सोचेंगे बहनों और भाइयों, क्या सोचेंगे? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ठीक है ना? और गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। ये सोच करके पूरा दिल से स्टूडेंट लाइफ को स्वीकार करें, अंतर्मुखता का आनंद लें, बहुत आनंद आता है। सच्ची बताएं आपको, दिल ही दिल में जैसे डांस करते रहेंगे, बाबा के साथ कह लो, श्री कृष्ण के साथ कह लो, और सखियों के साथ कह लो, जो भी आप समझो, लेकिन इतनी ऊंचाई में बुद्धि चाहिए। दिव्यता थोड़ी भी कम ना हो, देवभान थोड़ा भी ना आए, पर चिंतन बिल्कुल ना हो। कई बार ऐसा होता है दूसरे का चिंतन ज्यादा करते हैं और बाबा क्या कहता है, सो चिंतन करो। सो चिंतन करेंगे और शिव बाबा के साथ मन लगाएंगे तो आपकी उन्नति होगी। और पर चिंतन के लिए क्या कहते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है, गिरावट की जड़ है। तो अभी समय कौन सा है, ड्रामा का सीन जो चल रहा है उसके अनुसार कौन सा समय चल रहा है? सत्ययुग के नजदीक पहुंच रहे हैं ना, क्योंकि डायमंड एज है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या है? तो अपने आप को थोड़ा साक्षी होकर के देखिए कि सत्ययुगी आत्मा के जो लक्षण हैं वो मेरे अंदर कितने तक आए, क्या उनकी तारीफ करते हैं। सुनते तो हो ना, बाबा वाणी में भी सुना देते हैं, सर्वगुण संपन्न, एक भी गुण की कमी नहीं, सर्वगुण संपन्न। संपन्न सिर्फ गुण है नहीं, उसमें संपन्नता है, सभी कलाओं में संपूर्ण। अभी उसको सोलह कला कह लो या सर्व कला कह लो, जो भी कहना है, सर्व कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अगर सच्चा सुख पाना है, अति इंद्रिय सुख पाना है, सदा मौज में रहना है, तो संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनानी जरूरी है। मन में भी कोई ऐसा संकल्प ना आए, पांच भूतों में से कोई एक भी नहीं आना चाहिए। और इसके आगे क्या है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर बनना है। वो हमने देखा प्रैक्टिकल, बड़ों से, दादियों से, बाबा से, मम्मा से, एक दो के लिए कितना रिगार्ड रखते, कहने में आता है दुनिया के अंदर क्या कहते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, हाँ, बच्चों को प्यार दो, और समान को उसके बारे में कोई नहीं ठीक से बताता। मातेश्वरी जी, मम्मा बहुत प्यार से समझाती थी, बड़ों को भी आदर सत्कार दो, समान को भी सत्कार दो, बच्चों को भी प्यार और सत्कार दोनों दो। आप सोचिए थोड़ा किस एंगल से, कि आज ये बच्चे हैं, कल को ये बड़े होंगे, सत्यु के मालिक होंगे, ऐसे भावना से जब उनको देखते थे, हम कभी हमें नाम से चाहते थे भी मम्मा नाम लेकर के बुलाए, तो नाम लेंगी उसके साथ जी जरूर जोड़ेगी। हम कहेंगे मम्मा ऐसे ही सिर्फ नाम ले लो तो मुस्कराएगी, पर जब भी कभी संबोधित करेगी जी जरूर लगाएगी। तो फॉलो फादर, फॉलो मदर। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो बनने वाले हैं, उनके अगर संस्कारों को देखें, उनकी प्रैक्टिकल जीवन को देखें, उनके चाल चलन को देखें, उनके भाषा को देखें, उनके गुणों को देखें, हमारे लिए तो कितना इजी हो जाता है सब कुछ। इसलिए आज क्या संकल्प लेंगे सभी भाई बहने, क्या संकल्प लेंगे? आज की टॉपिक भले लिखी अंतर्मुखी बनकर के अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, ये टॉपिक है, लेकिन टॉपिक कॉन्शियस ना होकर के ज्ञान के हिसाब से हमें बहुत उमंग से ये लक्ष्य रखना है, बहुत अच्छी तरीके से। बाबा कहते थे हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हाँ? अभी आप बताइए, जो मेरे साथ, मैं तो अपने को पक्का करता रहता हूं कि मुझे जरूर सत्युग का प्रिंस बनना है, साकार बाबा भी जब बुलाते थे तो कभी कभी ऐसे शब्दों से बुलाते थे, शहजादे इधर आओ। तो हम सभी बाबा के बच्चे जहां पर भी हैं, बाबा कहते हैं सब मेरे राजा बच्चे हो, तो राजा बच्चे अपने आप को क्या कहेंगे, राजा और रानी यही कहेंगे ना। तो हम बाबा के ऐसे सिकिलदे भी बच्चे हैं और साथ में राजा बच्चे हैं, ये सदा पक्का करो बस। इससे आप देखेंगे कि जो रॉयल संस्कार होने चाहिए हमारे अंदर, वो स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं, अंतर्मुखी होने का भाव यही है, अंतर्मुखी होकर के गहराई में जाना और फिर संस्कारों को अपने जीवन का अंग बना देना, दैवी संस्कारों को धारण करना। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर आप देखेंगे जीवन में सदा आनंद रहेगा, चेहरे पे सदा मुस्कान रहेगी, नैनों में सदा चमक रहेगी और शब्दों में हमेशा शुभ और शुद्ध वाणी रहेगी। सुना तो बहुत, अभी थोड़ा 10-15 मिनट क्या करेंगे, थोड़ा इन बातों पर गहराई से रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं इसका जो स्वरूप बनना है। तो आज अपना योग का जो विशेष लक्ष्य रखेंगे, क्या रखेंगे, किस स्वरूप में अपने आप को देखना है, फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे या श्री कृष्णपुरी में चल करके देखेंगे, सजे सजाए भी और साथ में सर्वगुण संपन्न भी, क्या करेंगे? पहले फरिश्ता स्वरूप, फिर उसके बाद सतयुग के शहजादे शहजादी स्वरूप में थोड़ा टाइम आज अपने आप को उसी रॉयल थिंकिंग से याद करें, तो आप देखो कितना मन में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और वो फिर जितना अंतर्मुखी रहेंगे वो कभी आपसे जाएगा नहीं कहीं, सदा आपके पास रहेगा। ओके, सभी संतुष्ट हैं? पहले ये बताइए। अच्छा, ओके, तो अभी उड़ती कला में चलना है, उड़ते उड़ते फरिश्ता स्वरूप, बाबा को भी फरिश्ता के रूप में सामने देखते, सूक्ष्म वतन पहुंच जाना है। फरिश्ता सो देवता में परिवर्तित हो, स्वयं को सजे सजाए स्वरूप में, ऐसा देखें। दिल में यही हो, मैं सतयुगी देव स्वरूप आत्मा सर्वगुण संपन्न हूं।